मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 30 सितंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं पीपीपी मॉडल के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले दूसरी दो घटनाओं को देख लेते हैं। और ये दोनों घटनाएं ऐसी हैं जिनका न्यूज में उल्लेख आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, अखबारों में जरूर इन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और यहां तक कि इन पर एडिटोरियल भी लिखा गया है। इसीलिए देखिए, मैं बार बार आप लोगों को सतर्क करता रहता हूं कि आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जनरल स्टडीज की तैयारी के लिए न तो केवल इलेक्ट्रॉनिक न्यूज पर्याप्त है, यानी कि रेडियो और दूरदर्शन के न्यूज ही सफिशियंट है, और न ही केवल अखबार सफिशियंट है। आपको इन दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। जैसे अब देखिए कि आज मैं जिन दो घटनाओं की बात करने जा रहा हूं, ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, लेकिन न्यूज में आपको ये घटनाएं नहीं मिलेंगी। शायद किसी ने लिया हो तो मैं बता भी नहीं सकता। देखिए, एक जो घटना है वो ये है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी जो मौद्रिक नीति समिति है उसकी बैठक होनी थी, लेकिन वह बैठक नहीं हुई। एक दिन पहले उस बैठक को स्थगित कर दिया गया। अब एक सामान्य सी घटना आपको लग रही होगी, दूसरों के लिए तो बहुत ही सामान्य सी है, लेकिन आपके लिए नहीं जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। वो इसलिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये जो समिति है, ये समिति क्या करती है और इसके बैठक को इस तरीके से स्थगित करना क्या सामान्य सी बात है या कुछ विशेष बात है। लेकिन ऐसा आप जानेंगे कब? क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का आप सिलेबस उठा करके देखेंगे तो आपको वहां कहीं नहीं मिलेगा कि आपको इस समिति के बारे में जानना है। तो जब आप विस्तार के साथ सिलेबस को जानते हैं तभी आप इस घटना के महत्व को समझ सकेंगे, और इस पर फिर जब एडिटोरियल कमेंट आएगा या कोई न्यूज आइटम आएगा तो आप उसे पढ़ेंगे, अदरवाइज आप उसे छोड़ देंगे। तो देखिए, ये थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूंगा कि ये एमपीसी क्या है ताकि आप इसके महत्व को समझ सकें। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, हिंदी में है मौद्रिक नीति समिति। अगर आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाले टॉपिक को तैयार किया हो तो आपको मालूम होगा, और अगर तैयार करने के बाद अगर आपको मालूम नहीं है तो मान करके चलिए कि आपकी तैयारी अधूरी है। तो सन 2016 में बकायदे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट में परिवर्तन करके और इस समिति का गठन किया गया है। एमपीसी एक समिति है। अब आप देखिए किसके नाम में है, मौद्रिक नीति, यानी कि ये जो समिति है ये मौद्रिक नीति की घोषणा करती है। घोषणा करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कहना चाहिए कि मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है। आप अखबारों में लगातार पढ़ते रहते हैं कि मौद्रिक नीति सरकार ने घोषित की, जिसमें सीआरआर एसआरआर इन सब की घोषणा होती है। इसे आप सरल शब्दों में अगर कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ब्याज दर की घोषणा करती, ब्याज दर का निर्धारण करती है। आप समझ रहे हैं कि जो ब्याज दर का निर्धारण होता है वो देश, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है, जो वहां का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है कह लीजिए, वो जरा से भी ब्याज दर में ऊपर नीचे कर देता है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में हलचल मच जाती है। इतनी बड़ी चीज होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित मौद्रिक नीति, और ये समिति उसे घोषित करती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण काम करती है। अभी जो ताला इसकी स्थगित कर दी गई, उसका कारण ये था कि इसका जो इसकी जो संरचना है जो समिति की, वो पूरी नहीं हुई थी। इस समिति में टोटल 6 सदस्य होते हैं। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं वो तो इसके चेयरमैन होते ही होते हैं, होना भी चाहिए। बाकी जो मेंबर होते हैं वो तो चेयरमैन होगा, जो 3 मेंबर होते हैं, सदस्य 6 होते हैं टोटल। अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को मिला देंगे तो +1 हो जाएगा। तो 3 जो इसके सदस्य होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही अधिकारी होते हैं, और जो 3 होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, बाहर के लोग लिए जाते हैं। तो जो बाहर के लोग, जो भी इकोनॉमिक्स की जानकारी रखते हैं वो लोग होते हैं। तो अभी जो स्थिति है वो ये है कि सरकार को ये जो 3 स्वतंत्र जो सदस्य होने चाहिए थे इनकी भर्ती नहीं की गई। भर्ती क्या, भर्ती नहीं कहना चाहिए, आप जो भी कह ले, आप इनकी नियुक्ति नहीं की गई या जो भी आप मान लीजिए, नियुक्ति शब्द ज्यादा अच्छा होगा, और केवल इसीलिए टाल देना पड़ा। और जब समिति जब निर्णय लेती है तो देखिए वो बहुमत के आधार पर लेती है, बहुमत 4-3, 4 लोग जो बात कहेंगे वो माना जाएगा। और अगर मान लीजिए कि 6 सदस्य हैं जैसे, और तीन तीन ही, चार दो होंगे चूंकि 6 सदस्य निर्णय लेंगे ना, तो चार और दो होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए तीन तीन हो गए तब क्या होगा? तो ऐसे में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है वो अपना कास्टिंग वोट देते हैं, निर्णायक वोट देते हैं, और फिर जो फैसला होना होता है हो जाता है। और इसमें 6 सदस्य मिलकर के पूरे देश की अर्थव्यवस्था और क्या करना चाहिए उस पर डिस्कस करते हैं। अब आप देखिए कि कोविड का इतना माहौल चल रहा है, हमारी जो GDP है इतना डाउन चली गई है, इतना आर्थिक संकट से हम जूझ रहे हैं, और ऐसे समय में केवल इसलिए स्थगित किया जाना कि वहां सरकार ने नियुक्त नहीं किया है, एक तरह से आलोचना की बात तो है, क्योंकि जिनकी नियुक्ति से पहले 2016 में की गई थी तो उनका पहले से मालूम था कि इनको कब रिटायर हो जाना है, उनका कार्यकाल कब पूरा होना है, तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। दूसरी जो घटना है, आपको अखबारों में पढ़ने को मिल रहा होगा कि जो एक हमारा जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, मानव अधिकार संगठन, उसने भारत में अपने सारे काम रोक दिए हैं। भारत में इसकी दो एजेंसी काम करती हैं, सहायक इकाई एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया और एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट, इन्होंने अपने काम रोक दिए। काम क्यों रोके हैं? काम इसलिए रोके हैं क्योंकि भारत सरकार ने इनके जो खाते हैं, जो अकाउंट है, उसको सीज कर दिया है, उसको प्रतिबंधित कर दिया है। भारत सरकार ने इसे क्यों प्रतिबंधित किया है? भारत सरकार का मतलब हमारा जो एक हमारी जो संस्था है, प्रवर्तन निदेशालय, अक्सर आप उनके बारे में सुनते हैं, उसने ये आरोप लगाया है कि जो बाहर से इनके पास जो पैसा आ रहा है, उस पैसे का जो विनिमयन है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, और ये जो हमारा फेमा कानून है उसका ये उल्लंघन कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही सरकार ने, आपने देखा ना, कि जो विदेश से धन आता है उसका नियमन करने के लिए संशोधन किया है, जिसके बारे में मैंने स्वतंत्र रूप से आपसे चर्चा भी की थी। तो जो फेमा कानून है, देखिए वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में ये बना था। इससे पहले भी जो फॉरेन जो से जो पैसा आता है उसके लिए हमारे पास एक्ट था, लेकिन उसका नाम दूसरा था। उसका नाम होता था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसे फेरा कहते थे। लेकिन जब लिबरलाइजेशन का दौर आ गया, पूरी दुनिया का बाजार एक होने लगा, स्वतंत्रता मिलने लगी व्यापार करने की, तो अब आप देखिए कि रेगुलेशन की जगह क्या शब्द रखा गया, मैनेजमेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलेशन और मैनेजमेंट में क्या फर्क है। रेगुलेशन में आदेश है, आप रेगुलेट करना चाहते हैं, आप पकड़ना चाहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में आप थोड़ी सी आजादी दे रहे हैं, है ना, थोड़ी सी स्वतंत्रता है, सांस लेने की ज्यादा गुंजाइश है। तो हमने विदेशी विनिमय, जो विदेश से जो धन आता था, उसको रेगुलेट करने की बजाय मैनेजमेंट करने पर हम आ गए, तो इन्होंने फेमा एक्ट का उल्लंघन किया है। अब देखिए, ठीक है, लोग अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बातें करते रहते हैं, तो जो संस्था है वो अपनी बात कर रही है, जो भारत है वो अपनी बात कह रहा है, लेकिन डेफिनेटली अगर हमारा प्रवर्तन निदेशालय ऐसा कह रहा है तो उसके पास आधार है, और वो आगे चल करके देखिए कि क्या रूप लेता है। लेकिन आपकी जानकारी में होना चाहिए कि किस तरीके से जो NGOs हैं या इस तरह की जो संस्थाएं हैं विदेश से धन ला करके और कैसे उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, और इसी को नियंत्रित करने के लिए अभी इस कानून में संशोधन भी किया गया है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो शब्द है अब आपके लिए नया नहीं रह गया है। पब्लिक यानी कि सार्वजनिक, प्राइवेट यानी कि निजी, पार्टनरशिप यानी कि भागीदारी, यानी कि कोई जब हम प्रोजेक्ट लेते हैं, और खासकर इसका जो संबंध है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से है, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर कोई तैयार करते हैं तो अब सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वो अकेले कर सके, तो वो कहती है कि भाई ठीक है, कुछ काम हम करेंगे, कुछ काम जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो आए, जैसे मान लीजिए कि सड़क बनाने का काम है तो सड़क बनाने वाली कंपनी आ जाए, बंदरगाह बनाने का काम है तो बंदरगाह बनाने वाली कंपनी आ जाए, आप भी आ जाओ, मिल करके एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एक समझौता कर लेते हैं, तुम जो कर सकते हो, तुम्हारी जो एक्सपर्टीज है जहां वो तुम कर लो, और हमारी जो एक्सपर्टीज है या हम जो कर सकते हैं, चूंकि सरकार तो अथॉरिटी है, वो हम कर लेंगे, और इस तरीके से मिल करके फिर अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, इसे हम कहते हैं सार्वजनिक निजी भागीदारी। ये जो PPP है, अब सार्वजनिक निजी भागीदारी तो मैंने सामान्य तौर पर आपको बता दिया, लेकिन इसके जो मॉडल हैं, जो सरकार और प्राइवेट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एक ही प्रकार का नहीं होता। वो कई प्रकार के होते हैं, और इनमें जो चार प्रकार हैं केवल उनका नाम मैं आपको यहां थोड़ी सी बताना चाहूंगा ताकि आप इन पर अच्छी तैयारी कर सकें। उनके बारे में डिटेल्स में बताने के का तो वक्त आप जानते हैं कि यहां होता नहीं है। हाँ, एक बात मैं जरूर और कहना चाहूंगा कि इस विषय को मैंने क्यों चुना। आपको लग रहा होगा कि भाई ये कहां से विषय चुन लिया गया, तो अगर आपने रेडियो न्यूज सुना हो तो इधर उत्तराखंड और आपके उत्तर प्रदेश में, बिहार में आप देख रहे हैं कि कुछ समय से जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वहाँ समर्पण कर रहे हैं ना, कभी बांध बन गया है तो कहीं संयंत्र स्थापित हो गया है वाटर प्योरीफाई का, इस तरह के संयंत्रों को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। तो कल अगर आपने रेडियो न्यूज सुना हो तो उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया कि ये संयंत्र PPP के किस मॉडल के तहत बनाया गया है। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि नहीं, PPP के जो मॉडल होते हैं उसके बारे में आपको बताया जाना चाहिए, और इसको लेकर के बकायदे प्री में क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं डिटेल में तो आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन चार जो बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल हैं, वैसे ज्यादा हैं लेकिन चार सबसे जो पॉपुलर मॉडल हैं उनके बारे में मैं आपको नाम भर केवल बता रहा हूं। इनकी तैयारी आप अपने लेवल पर कर लेंगे, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा जो पेड स्टूडेंट हैं कि बकायदे डिटेल्स में इस पर लेक्चर अवेलेबल कराया गया है। एक है BOT मॉडल, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बनाओ चलाओ संचालन करो और ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर कर दो का मतलब है कि फिर से सरकार को दे दो, मतलब वो संपत्ति आपकी नहीं हो जाएगी। अगर आप बंदरगाह बना लेते हैं तो ठीक है, आप बंदरगाह बनाइए, फिर बंदरगाह को ऑपरेट भी करिए, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद 20 साल 30 साल जो भी समझौता हुआ है 40 साल, इसके बाद उस पर सरकार का अधिकार हो जाएगा, उसका ट्रांसफर कर दीजिए। दूसरा है BOT NUT मॉडल। खासकर देखिए, शुरुआत तो BOT से की गई थी, है ना, तो उसमें फिर लगातार सुधार करना पड़ा, उसमें समस्या आई तो फिर उस मॉडल में थोड़ा सा सुधार किया गया, रिफॉर्म किया गया, तो BOT NUT मॉडल आ गया। इसके बाद है हाइब्रिड NUT मॉडल, इसको HAM कहते हैं, हाइब्रिड NUT मॉडल। और इसके बाद जो चौथा मॉडल है वो है स्विस चैलेंज मॉडल। तो मैं चाहूंगा कि इन चार मॉडल्स पर आप एक केवल परिचयात्मक जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से एक मित्र हैं नीतू सेजवाल, आपके प्रति बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।